ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस 16 जनवरी के बरसाना आय कैंप के दूसरे दिन आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। उम्मीद है कि आप सब लोग उत्साही होंगे, फ्रेश होंगे, और नहीं फ्रेश होंगे तो खड़े रहेंगे, ऐसी हमारी केवल आशा है। आत्मा स्पिरिचुअल है ना, और हर एक वस्तु का एक पोषक वातावरण होता है जिसमें वो व्यक्ति वो वस्तु जो है ना एकदम उत्साहपूर्ण दिखती है, और अगर उसके प्रतिकूल वातावरण में जाएंगे तो वो फिर ऐसे नीचे चले जाती है, मुरझा जाती है ना। प्रिय व्यक्ति सामने आया तो एकदम खिल जाता है व्यक्ति, और अप्रिय व्यक्ति सामने आने से पूरा मुरझा जाता है। उसको आज की भाषा में क्या डिस्चार्ज बोलते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है। और कितना भी थका रहेगा और हमारे प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति सामने आई तो बड़ा उत्साह आ जाता है ना? वैसे हमारी आत्मा सच्चिदानंद है, और हमारी आत्मा के लिए भी कुछ चीजें अनुकूल और प्रतिकूल है। जो आत्मा को पोषण देता है वो आत्मा को खिला देता है, बिल्कुल एकदम आत्मा खुल जाता है उत्साहपूर्ण वातावरण में। और तमोगुण के वातावरण में जाएंगे, रजोगुण के वातावरण में जाएंगे तो शरीर और मन बहुत ज्यादा आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन आत्मा जो है वो मुरझा जाती है, आत्मशक्ति जो क्षीण हो जाती है। तो ये धाम जो है वो साक्षात भगवान है, और भगवान पूर्ण सच्चिदानंद है, और हम लोग अणु सच्चिदानंद है। वो विभु है और हम अणु हैं, वो अनंत है और हम सीमित हैं। लेकिन जैसे लोह चुंबक होता है ना, लोह चुंबक वो जहां पर रखते हैं उसके सामने अगर आप लोहे के टुकड़े डालेंगे तो अपने आप को ऐसे एकदम डिजाइन में आके खड़े कर देते हैं, क्योंकि लोह चुंबक लोहे का एक आकर्षण बिंदु है। जहां भी लोहे चुंबक रखेंगे उस दिशा में लोहा अपना दिशा बदल के अपने आप को सेट कर देगा। तो वैसे ही आत्मा के लिए सबसे बड़ा लोह चुंबक भगवान है। जब भी भगवान आत्मा के समक्ष आते हैं या संबंध में आते हैं तो आत्मा तुरंत रौनक, आत्मा में रौनक आ जाती है, उत्साह आ जाता है, तेज आ जाता है। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो भक्त भी नहीं होते, लेकिन जब कभी बहुत ज्यादा तीव्र आध्यात्मिक वातावरण में आते हैं जहां पर बहुत संत बैठे हैं, वो भगवान का नाम का कीर्तन हो रहा है, तो उधर उनको नास्तिक होंगे शायद वो, लेकिन वो कहते हैं बड़ा अच्छा लगा, ऐसा बोलेंगे आपको, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, ऐसे बताएंगे। फिर भगवान की बात करेंगे तुरंत वो टाल देंगे, नहीं नहीं हमको तो उसमें विश्वास नहीं, लेकिन अनुभव जरूर करेंगे। जैसे काला या गोरा हो या बीमार हो या अच्छा आदमी हो, अगर कोई मीठा पिएगा तो उसको अच्छा ही लगेगा ना, या तो बुखार होगा तो काला हो गोरा हो मुसलमान हिंदू हो, क्रोसिन की गोली खाएगा तो बुखार उतरेगा ना उसका, है ना। वो थोड़ी गोली बदल फर्क करेगी कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि इंडियन है कि पाकिस्तानी है। वो जिस भी शरीर में क्रोसिन गोली जाएगी उसका असर वो दिखाएगी। उसी तरह से आत्मा के विषय में कुछ परम सत्य बातें हैं कि जब भी आत्मा भगवान के संपर्क में आएगा तो उसको उत्साह का अनुभव होगा, और आत्मा माया के संपर्क में जाएगा तो तुरंत उसको निरुत्साह का अनुभव हुआ। इसलिए धाम में आने से, मैं मेरा अनुभव बताता हूं, मैं सब जगह प्रवचन करता हूं, मैं गल्फ में भी गया हूं, इंग्लैंड में भी गया हूं, अमेरिका भी गया हूं और बहुत जगह गया हूं, भारत में सब जगह जाता हूं, लेकिन जब वृंदावन बरसाने में बैठता हूं ना तो मुझे भी प्रवचन करते समय अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। मैं कभी कभी जो तैयारी करके आता हूं वो भी बोलता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बातें बोलता हूं जो मैंने सोचा भी नहीं कभी या प्लान भी नहीं किया है, क्योंकि वो जिस जगह बैठा हूं ना उस जगह का प्रभाव है वो। और ऐसे प्रभावशाली जगह पर जब हम आते हैं और अगर उस प्रभावशाली जगह के विषय में हम अज्ञानी हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप आए हो बहुत प्रभावी जगह पर लेकिन आपको पता ही नहीं वो क्या जगह है। कुछ प्रभावशाली जगह में आकर भी आप देख रहे हैं पानी पूरी कहाँ मिल रही है और बड़ा कहाँ मिल रहा है और इधर स्वादिष्ट क्या होता है, इधर क्या अच्छा मिलता है, कोई बोलेगा गजक अच्छा मिलता है, कोई बोलेगा यहाँ पर ये अच्छा मिलता है, पराठे अच्छे मिलते हैं, तो ये सोचने में कोई पाप नहीं है। अगर आपने सोचा पानी पूरी कहाँ अच्छी मिल रही है और ढूंढ के निकाल लोगे, पाप की बात नहीं है, लेकिन 1,000 रुपया मिलने वाला था तो 10 रुपया लेके आ गया। उस स्थान में आपको 1,000 रुपया देने की पोटेंसी थी लेकिन आप अपने अज्ञान के वश 10 रुपया लौट के आए हो और गर्व भी कर रहे हो 10 रुपया लेके आए। लेकिन अगर ज्ञान हो जाता है आपको तो आप बोलेंगे 10 रुपया लेके आए, हमें ट्रिप बिखर गया मेरा पूरा, 999 लेके आया था तो समझता कि भाई चलो 1 रुपया नहीं आया लेकिन पूरा लाभ लेके आया मैं। तो ये सब मैं इसलिए आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि हम लोग सब लोग जिस जगह बैठे हैं ना वो आत्मा के लिए सर्वोच्च शक्तिशाली प्रभावशाली जगह है। सुस्त से सुस्त आदमी को भी वो जगह आपको शक्ति का अनुभव दिलाएगी, खाली उसमें एक ही होना चाहिए, अनुकूल भाव होना चाहिए। अगर नास्तिक आदमी आएगा यहां पर और यहां पर शराब पिएगा, मांसाहार लेगा, व्यभिचार करेगा, जुआ खेलेगा, झूठ बोलेगा, खून करेगा, लूटेगा, लोगों को डकैती डालेगा, तो ये धाम उसको प्रतिकूल परिणाम दिखाएगा। जैसे मैं अच्छा आदमी हूं और आप मुझसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो मैं आपसे भी अच्छी अच्छी बातें करूंगा, लेकिन आप मुझसे बुरी बातें करेंगे हो सकता है 10 मिनट के बाद मैं आपको एक तमाचा मारूंगा। वो मैं अच्छा आदमी होने पर भी मेरे साथ अगर बुरा व्यवहार होगा तो मैं कुछ समय तक उसको सहन करूंगा लेकिन उसके बाद में फिर उसका जवाब भी दूंगा। भगवान ने भी ऐसे कहना, दुर्योधन को कितना समझाया उन्होंने, कितनी तरह से समझाया, बाद में बोला चलो छोड़ दो सब कुछ, अभी आप आधा हिस्सा वगैरह भूल जाओ, इनको 5 गांव दे दो तो भी नहीं बोलता है वो। और ऊपर से बोलता है कि सुई की नोक पर जितनी जगह है ना उतनी भी नहीं दूंगा, युद्ध करना ही पड़ेगा उतनी जगह प्राप्त करने के लिए भी। तो फिर उन्होंने ही फिर युद्ध का आयोजन करके सब कौरवों को मार डाला। आज भी सब लोग भगवान को ये दोष देते हैं कि ये कृष्ण ने ये छलिया कपट करके महाभारत का युद्ध का आयोजन किया और सबको मार दिया। लेकिन भगवान तो सर्व, क्या कहते हैं, सर्व शुभ है भगवान, सर्व पवित्र है, वो तो प्रेम देने के लिए आए थे, वो प्रस्ताव लगकर आए थे कि भाई नहीं हो जाए युद्ध तो अच्छा है, आप अच्छी तरह से मान जाओ, सब लोग प्रेम से रहो। लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्ततैव भजाम्यहम्, जिस प्रकार से भगवान कहते हैं जिस प्रकार से आप मेरे सामने अपने आप को प्रस्तुत करोगे मैं भी उसी प्रकार से आपको प्रतिसाद दूंगा। तो जिस जगह पर आप बैठे हो उसका एक वैशिष्ट है, जिस जगह पर आप बैठे हो अगर किसी ने वहां पर भजन किया है, संत ने अपना समय बिताकर तपस्या की है, भजन किया है, साधना की है, तो उधर पहुंचते ही आपको ना ऐसा दिव्य अनुभव होने लगेगा। और इसी धाम में जिस जगह पर आज डकैती हो रही है, लूटमार हो रही है, बलात्कार हो रहा है सब जगह पे, तो वहां पर आपको धाम जैसा अनुभव आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम लोग कहां पर आ गए सर, बंबई जैसा लग रहा है, सब लोग बीड़ी पी रहे हैं, कोई शराब पी के तर रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई लूट रहा है किसी को, कोई गाय काट रहा है, कोई बलात्कार हो रहा है, खून हो रहा है किसी का, गोली चल रही है, आंदोलन चल रहा है, तो आपको धाम का अनुभव नहीं होगा, है ना। धाम भी एक कमल की तरह है, वो जैसे भक्त आएगा ना तो वो खुल जाता है, ऐसे अपना गौरव आपको प्रकट करता है, और कोई पापी आ गए तो वो बंद हो जाता है, अपना सारा गौरव छुपा लेता है। तो आप क्या चाहते हो कि आपके आने से धाम का कमल खुल जाए और उसका पूरा गौरव आपको दिखाई पड़े, कि आप चाहते हो कि जब बम्बई में जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे यहां पर, तो फिर इतना सारा प्रयास करने के बाद भी आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ आपको मिलना चाहिए था, जिसके आप योग्य थे। तो अल्टीमेटली शरीर से आने से कुछ नहीं होता है, रूम बुकिंग करने से कुछ नहीं होता है, यहां पे आके आत्मसंबंध प्रस्थापित होना चाहिए। जब आत्मसंबंध प्रस्थापित होगा तो फिर ये नए नए दिव्य अनुभव आपको आने लगेंगे। इसलिए ये सेवा जो हम कर रहे हैं ना, एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है जिसके द्वारा ये कमल आप खोल सकते हो। कमल प्रेम से खुलेगा आपके लिए। जप क्यों कर रहे हैं हम लोग, नियम पालन क्यों कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन बने। जैसे अभी हम बरसाने में बैठे हैं तो यहां पर वो 3G नहीं आ रहा है, 4G भी नहीं आ रहा है, बीच में कभी कुछ सेकंड के लिए आता है और चला जाता है, और बॉम्बे में जाएंगे तो पूरा फुल 4G मिलेगा आपको। तो यहां पर फिर वो मैसेज नहीं जा रहे, SMS नहीं आ रहे, व्हाट्सएप नहीं जा रहा है, कोई मेल इंपॉर्टेंट 2 घंटे इंतजार किया नहीं पहुंच रहा है। आपका मोबाइल तो ठीक है लेकिन वातावरण में उतना रेंज नहीं है, तो दोनों होना चाहिए, मोबाइल भी ठीक होना चाहिए, 4G वोल्टे और वातावरण भी फुल रेंज वाला होना चाहिए, तो आपका काम बढ़िया होगा। हाँ, जिस प्रिंसिपल पर हम चल रहे हैं ना मुंबई में, हमारे शहर में, उसी प्रिंसिपल पर ही आध्यात्मिक जीवन चलता है। ये उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपको समझ में तुरंत आएगा कि क्या कहा जा रहा है। उस तरह से आत्मा वो आपके मोबाइल जैसा है, बिल्कुल 4G वोल्टेज होना चाहिए, फुल एकदम। वो तो कैसे होगा, जब आप भजन करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, पाप नहीं करेंगे, प्रसाद खाएंगे रोज, भगवान का नाम लेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र सुनेंगे, वैष्णव व्यवहार करेंगे, और इस तरह से आगे बढ़ते, सेवा में लगे रहेंगे हमेशा, तो आपका मोबाइल फुल पावर में है, और रोज उसको जब करके आप चार्ज करना चाहिए, तो डंडी पूरी पूरी फुल रेंज रहेगा उसके अंदर। फिर रहा वातावरण, फिर आप कहीं डिस्कोथेक में जाओगे तो वातावरण में एक डंडी भी नहीं मिलेगी आपको, स्पिरिचुअल नॉट इवन वन स्टिक। मंदिर में जाएंगे तो फुल मिलेगा रेंज, तुरंत चार्ज हो जाएंगे आप। और एक जगह संतों के संग में जाएंगे तुरंत आपको वो चार्ज मिलेगा, भक्तों के संग में जाएंगे तुरंत चार्ज मिलेगा। तो आपको अगर सदैव चार्ज में रहना है, सदैव, तो आपको अपना पूरा चार्ज में रखना पड़ेगा खुद को, और वातावरण में भी ऐसे रहना पड़ेगा जो परस्पर संबंध भगवान का आपका जो है बना ही रहे हमेशा, उसमें कहीं खंड ना पड़े, अखंड रहे वो, निरंतर बना रहे। जैसे हमारे घर में जो बेटी है उसके लिए गुरुजी ने बताया है कि इसको हमेशा भगवान के और भगवान के विषय में उसमें संग में रखो। तो हम लोग उसको कहीं शादी में, कहीं किसी का नामकरण है, किसी के मुंजे है, किसी का उद्घाटन है, किसी का गृह प्रवेश है, कहीं उसको लेके जाते नहीं, और लेके जाते ही हैं तो केवल धाम में लेके जाते हैं या तो सत्संग में लेके जाते हैं, यानी कि मंदिर में या तो कहीं तीर्थ यात्रा में, ताकि उसका कम से कम बाहरी वातावरण जो है ना वो उसके लिए फुल चार्ज देता रहे। और वो भी ऐसी है कि जैसे वातावरण बदले होगा ना वो तुरंत चिल्लाने लगती है, ये बताती है मुझे वातावरण पसंद नहीं है, निकल जाओ वहां से, लेके जाओ यहां से मुझे। तो आत्मा बहुत सेंसिटिव होती है, आत्मा का स्वभाव है कि वो भगवान का अंश है, भगवान के विषय में उसको अपने आप आनंद मिलता है, भगवान के विषय में अगर जोड़ेंगे तो। इसलिए मनुष्य जीवन जो है वो उसी के लिए है, शरीर की नुमाइश करने के लिए नहीं है, शरीर के सौंदर्यवान भागों को लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि मैं कितना यौवन में हूं, कितना सुंदर हूं, या कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरा इतना ऐश्वर्य है, ये सब जताने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। वो तो कर्मों के हिसाब से आप आता जाता रहेगा, कभी आंधी कभी तूफान, कभी खुशी कभी गम, चलता रहेगा। वो मराठी में भी कहा गया है कि प्रपंच जो है ना वो होते रहता है। जैसे आप छोटे थे, अभी बड़े हो गए, अभी कभी शादी हो जाएगी, फिर कभी बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनकी शादी होगी, फिर कभी लोन पे घर था तो लोन फिर जाएगा, अपना नाम पे हो जाएगा, उसके बाद टू व्हीलर थी, पहले साइकिल थी, फिर टू व्हीलर आ जाएगी, फिर उसके बाद फोर व्हीलर आ जाएगी। ये अपने कर्मों के अनुसार अपने आप चलता है, आप चाहो या ना चाहो, कर्म आपको अपना फल देंगे, अच्छा हो देंगे और बुरा भी देंगे, दोनों में डिस्काउंट नहीं है। आपका कर्तव्य करते रहो, आप जितना लिखा है ना उतना ही मिलेगा। क्या जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना, है ना? वो कर्म का चाबी जितना भरा हुआ है वो आपको ना चाहते हुए भी बुरा ताल ले सकते आप, और ना चाहते हुए अच्छा भी आते रहेगा। तो जो होने ही वाला है उसके लिए इतना माथापोड़ी करने की जरूरत क्या है? पूछना चाहिए कि करना क्या है वो बताओ। यहां पर अपने आप होने वाली चीजें हैं कुछ, और कुछ आपको करना है, तो वो है अध्यात्म। बाकी सब जो है प्रपंच, जो कर्म के हिसाब से आता जाता रहेगा ना, उसको प्रपंच कहते हैं। संसार, मृत्यु संसार वर्तमानी, इस संसार की बातें हैं सब। और बाकी जो हमें करना है, जो हमारे कर्मों के ऊपर आधारित नहीं है कि मैं अमीर होऊंगा तो ही मैं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सुंदर रहूंगा तो ही कर पाऊंगा, अगर मैं भारत में रहूंगा तो ही कर पाऊंगा, विदेश में नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं पढ़ा लिखा होगा तो ही कर पाऊंगा, अनपढ़ होगा तो नहीं कर पाऊंगा, ये इसके परे कुछ चीजें हैं जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल कहते हैं, और वो हमें करना है। सुदामा जो फूटी कौड़ी भी नहीं थी उस घर में, लेकिन उस परम भक्त था भगवान का, परम संत रूप में था वो, भगवान ने भी चरण धोए उसके। तो ये बात तो जाहिर हो गया ना कि भगवान पैसे को देकर किसी को मानते नहीं है, है ना? एक ही समय पर दो भाग किए उन्होंने अपने आप को, दो रूप में, दो रूप बनाए, और एक ही समय वो राजा बहुलाश्व के घर में गए, और एक ही समय श्रुतदेव ब्राह्मण के भी घर पे गए। एक जगह सिंहासन पे बैठे और सोने की थाली में उनके पैर धोए गए, एक जगह पर गोणपाट पे बैठे और शाक शाक रोटी खाया उन्होंने, एक जगह पंच भगवान का है। एक ही समय पे चल रहा है सब कुछ, और दोनों राजा भी नाच रहे हैं, श्रुतदेव भी नाच रहे हैं, और दोनों जगह भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं, और दोनों जगह पे दाल शाक रोटी या पंच भगवान ना बड़े, दोनों जगह प्रेम से खा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भगवान जो है वो भौतिक दुनिया के विषयों की वस्तुओं पर आपका भेदभाव नहीं करते। इसलिए बहुत ये आशावादी डिस्कशन है, वेरी होपफुल डिस्कशन। क्यों? क्योंकि जो फटेचर आदमी भी है उसके लिए भी सर्वोच्च जगह पहुंचने की सुविधा यहां पर है, जो अमीर से अमीर पढ़ा लिखा है, बहुत ऐश्वर्य संपन्न है, उसके लिए भी यहां पर सर्वोच्च स्थान पर जाने की सहूलत दी गई है। लेकिन हम लोग ऐसा पसंद करते हैं बोलना, क्या प्रभु जी आप तो पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर हो, आप तो अच्छे घर से हो, ब्राह्मण हो, इसलिए आप लोग भजन कर सकते हो, हम तो देखो कैसे हो, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कैसा भजन करेंगे। ये बिल्कुल बेकार की बात है, बेफजूल बात है, ये असत्य बात है, कोई दम नहीं इस बात में, क्योंकि अध्यात्म जो होता है ना वो इन सब चीजों के परे होता है। वो गरीब से गरीब भी कर सकता है, अमीर से अमीर भी कर सकता है। सबको भगवान ने अपने भजन में इक्वल मौका दिया है, राजा को ज्यादा मौका नहीं दिया है, आपको कम मौका नहीं दिया है, सुंदर आदमी को ज्यादा और कुरूप व्यक्ति को कम मौका नहीं दिया है, और ये हमारे लिए बहुत आशादायी बात है। हम अगर भिखारी भी होंगे तो भी हमको पता है कि हम भगवान के चरणों में जरूर पहुंच सकते हैं, कोई बाधा नहीं उसमें। तो रूप गोस्वामी क्या बताते हैं कि भगवान के भक्ति के रास्ते में कोई भी भौतिक बाधा नहीं है, देयर इज नो मटीरियल इंपेडिमेंट इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए अगर आप निरुत्साह भी हो किस बात पर कि भाई मेरे पैसे ही नहीं है, क्या करें, कितना मत्था फोड़ी करें, या कितना एग्जाम दिया मैंने लेकिन मेरे को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल रहा, कितना सीईटी दिया नंबर ही नहीं आता है ऊपर, ऐसा भी होगा ना तो भी भगवान की भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको पूरी तरह से वहां पर फुल रेंज है आपके लिए, कोई निरुत्साह होने की जरूरत नहीं है। तो साल में एक बार, कुछ महीने में एक बार, किसी का भाग्य तो हर महीने धाम में हम लोग आते हैं, अपने आत्मा को फुल चार्ज करने के लिए आते हैं। यहां पर आपको मोबाइल का 3G 4G का रेंज नहीं मिलेगा, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ का फुल रेंज मिलेगा, यह निश्चित है। जितना और किसी तीर्थ में नहीं मिलेगा उससे ज्यादा यहां मिलेगा, और यहां पर भी जितने ब्रज में बाकी स्थानों में जितना नहीं मिलेगा उतना ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको बरसाना, नंदगांव, जावट, इस अंदरूनी जगह पर मिलेगा, क्योंकि भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। भगवान ने किसी राक्षस को भी यहां पर आने को नहीं दिया, सब जगह राक्षस आए, लेकिन नंदगांव में, बरसाने में, जावट में कभी राक्षस नहीं आए। विशेष योजना है उनकी, जिस जगह पर उनको अपना पूरा प्रेम का प्राकट्य करना है, जिस जगह पर उनको अपना पूरा आध्यात्मिक वैभव प्रेम का प्रकट करना है, उस जगह पर वो राक्षसों को बुलाकर उसमें बाधा नहीं लाना चाहते, है ना। तो मैं भोजन कर रहा हूं, बड़े अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं और मैं अच्छी तरह से खा रहा हूं उसको, उतने में किसका फोन आता है, अरे वो मेरा भाई जो है वो दूसरे माले से गिर गया, वो भी बेहोश होकर, उसको अभी क्या करें, कहां ले जाना है उसको, तो रस करने से भंग हो जाता है ना। मैं अच्छे प्रेम से बनाए हुए व्यंजन को प्रेम से पा रहा हूं, शांति से एकदम, और ये फोन आते ही व्यंजन अपनी जगह पर है लेकिन मुझे उसमें अभी आनंद नहीं आएगा, जब तक वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंचेगा, उसका इलाज शुरू नहीं होगा, तो मेरा शांति नहीं होगी। उसी प्रकार से भगवान अगर प्रेम की कोई लीला कर रहे हैं, अचानक कोई कंस का द्वारा भेजा गया राक्षस आ गया उधर, तो प्रेम की लीला को भंग करना पड़ेगा ना, फिर जाके उसको मारना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने नंदगांव, बरसाने, जावट एरिया में किसी राक्षस को प्रवेश नहीं दिया, भगवान ने नहीं, भगवान के ऊपर एक व्यक्ति है, उसने, उसका नाम राधा रानी है। वो एक बड़ा भक्ति के जीवन का एक बड़ा रहस्य है, वो जो सब शास्त्रों में इतनी खुले जगह, खुली तरह से प्रकट नहीं है। ये तत्व जो है ना, ये आम वेदों में, आम उपनिषदों में, आम पुराणों में नहीं मिलेगा आपको। आपको तत्व ज्ञान मिलेगा आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में, पूरा भगवान के कितने गुण हैं, हमारे कितने हैं, कितने मैच होते हैं, कितने नहीं मैच होते हैं, ये सब हर उसको भी मिलेगी आपको उसमें। लेकिन इस सारे की चाबी किसके पास है वो नहीं बताएंगे आपको, वो केवल कुछ कुछ शास्त्रों में लिखा गया है, रहस्यमय बातें। यहां तक कि हमारे सुखदेव जी महाराज जब जीवन का अल्टीमेट रहस्य बताने के लिए बैठे परीक्षित महाराज को, हाँ, वो भी उधर बोल नहीं पाए उसको, इस भय से कि अगर इस रहस्य की बात खोलेंगे तो वो खुद इसे बेहोश हो जाएंगे। एक शास्त्र में श्लोक है, उसको मेरे को पूरा श्लोक संस्कृत का याद नहीं, उसका अनुवाद यह है कि अगर सुखदेव जी अगर एक बार भी राधा का नाम अगर उच्चारण करते तो उनको 6 महीने की मूर्छा लग जाती, ही वुड बी अनकॉन्शियस फॉर 6 मंथ्स। जो उनको ही पता था, जैसे अपना बारे में सब जानते हैं कि मुझे कभी गुस्सा आता है, कभी आनंद आता है, सब पता है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। इसलिए उन्होंने जानबूझ के राधा रानी का नाम कहीं भागवत में उच्चारण नहीं किया। क्यों नहीं किया? 6 महीने अगर मूर्छा लग गई तो बेचारे परीक्षित जी का क्या होगा, उनको तो 7 ही दिन का टाइम दिया गया है, 7 दिन में अगर 6 महीने गए तो वो बेचारे कहीं ना कहीं के रह जाएंगे। तो करुणावश उन्होंने ये बात को टाला, इसलिए भागवत में भी उसका पूरा वर्णन नहीं है। तो फिर गर्ग संहिता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, वहां पर फिर खुले दिल से इसकी चर्चा की गई है, लेकिन सब जगह पे नहीं है, क्योंकि ये ऐसा रहस्य है कि श्री कृष्ण भगवान वो किसी के वश में नहीं आते, किसी पर सहज कृपा नहीं करते, बहुत श्रूर कहते हैं उसको, बहुत चालाक है वो। जब तक आप अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अन्य किसी को भी नहीं, आपका दिल का 1% भी किसी को दे सकते नहीं आप, सारा 100% उनको ही देना है, तभी वो आप पर कृपा करेंगे। तेषां सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम, सब कुछ देंगे ना सब कुछ, तो फिर आपको आपकी ओर मुड़ के देखने के बारे में वो सोच सकते हैं। ऐसे है वो भगवान। लेकिन राधा रानी जो है ना, वो भगवान की इतनी प्रियतमा है कि उनके कहने पर वो कुछ भी ना करने पर भी उसकी ओर देख सकते हैं अगर वो सिफारिश करती है तो। और ये उनकी जगह है यहां पर, जैसे मैंने कल बताया आपको, सब दुनिया के जितने भी जीव हैं, महान जीव, महान से महत्तम जीव जितने हैं, वो सब कृष्ण की चरणों की धूल लेने के लिए ढूंढते रहते हैं। योगी खोजत, ध्यानी खोजत, तभी खोजत, सब लोग ढूंढ रहे हैं, उनको कहीं भी नहीं मिल रहे। वो यहां पर क्या ना, वो कहते हैं सब लोग ढूंढ रहे हैं उनको, महान लोग कहां कहां तपस्या करके, घर दार छोड़ के, पैसा छोड़ के, परिवार छोड़ के, इंद्रिय भोग छोड़ के, कहां कहां एकांत में बैठकर ढूंढ रहे हैं उसको, पुकार रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। वो कहते हैं वही व्यक्ति जो है ना, उनको गोपियों ने अपने चोटी में बांध के रखा है, उसको लटकन कहते, लटकन आपको जो बना था ना वेणी, उसमें बांध के रखा है उनको, और आराम से बंद के बैठे हैं। हाँ ठीक, अच्छी बात है, वेरी नाइस। उसी को बोलते हैं, उधर मैया ने बांध के रखा है उखल से, बड़ी बड़ी शरारत कर रहा है, उखल चोरी करता है, बांध के रखूंगी, अभी हिलने का नहीं यहां से, मैं बहुत सारे काम है, खड़े रहो ऐसे ही। तो बंदे खड़े हैं, कभी कहते हैं राधा रानी उनको वन में बांध के रखती है क्रोध आने पर, मान करने पर, ये कैसे हो सकता है? अरे वो दूध निकालने वाली औरतें जो हैं, गोपियां, गोपी गोपांगनाएं, ऐसे कैसे उनको बांध सकती है? परम ब्रह्म जो किसी के पकड़ में नहीं आते, ना ध्यान के पकड़ में आते हैं, ना तप के पकड़ में आते हैं, ना तपस्या के पकड़ में आते हैं, ना किसी कर्मकांड के पकड़ में आते हैं, ना ज्ञान कांड के पकड़ में आते हैं, ना उपासना के आते हैं, ना योग के पकड़ में आते हैं। इतने दुर्लभ योगी भी ध्यान गम्यम, इतने दुर्लभ जो व्यक्ति हैं वो किसी के उखल में बंधे हुए हैं। एक कथा ऐसे आती है पता है, कि वो थोड़े से रेंगते हुए भगवान थे, तो वो रेंगते रेंगते पेट के बल ऐसे पेट घिसते 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 ऐसे सीढ़ी पे आ गए, और अभी कैसे बताएं आपको, वो सीढ़ी पे ऐसे लटक लटक गए कि यहां पर सीढ़ी है, इधर उनका ऊपर का अंग है और नीचे ऊपर नीचे का अंग है, और वो सीढ़ी के वो एज पर ऐसे लटक रहे हैं इसे। इमेजिन, आप सोच सकते हैं, सीढ़ी ऊपर की तरफ है, वो बीच में है और लटक रहे हैं इसे, और नारद मुनि वहां से गुजर रहे हैं, तो वो हंस देते हैं उनको देखकर, बोले देखो योगी इतना ध्यान कर रहे, तप कर रहे, पता नहीं कितने जन्मों तक कर रहे हैं, उनको ये देखने को मिलेगा क्या? और वो हंस पड़ते हैं, फिर तुरंत रोने लगते हैं नारद मुनि। क्या सोचकर होते हैं? अरे बेचारे, इतना सहज दृश्य है ये, लेकिन बेचारे योगियों को कैसे मिलेगा दर्शन इसका, ये तो प्रेमियों को मिलेगा केवल। तो योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनको ये दर्शन कैसे मिलेगा? उनको तो ऐसे दर्शन मिलेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बताओ वत्स क्या वरदान दूं, कि मुझे तो ऐसा लोक चाहिए इसमें कोई मुझे हिला नहीं सकता, तथास्तु, अदृश्य हो जाएंगे। उनको वो दर्शन मैक्सिमम वो मिल सकता है, लेकिन सब कुछ भगवान की स्थितियों को छोड़कर, एक रेंगता हुआ बालक बनकर, उसको बोलने को नहीं आता है, इसको चलने को नहीं आता है, इसको हाथ पकड़ के चलने को सिखा रहे हैं, इसको तोतले तोतले बोलने को सिखा रहे हैं, दुनिया को जिन्होंने वेदवाणी दी है उनको मैया बोलने को सिखा रही है, तो दुनिया चलाते हैं उनको मैया हाथ पकड़ के चलाने को सिखा रही है, चलने को सिखा रही है। ये जो दृश्य है ना, ये केवल प्रेमियों को मिलता है जो प्रेम करते हैं भगवान के ऊपर। बाकी साक्षात्कारी लोग बहुत होंगे, ज्ञानी बहुत लोग होंगे, इन सारा साक्षात्कार और सारा ज्ञान जो है ना, वो यहां पर आके फेल हो जाता है। भगवान स्वयं भी फेल हो जाते हैं यहां पर आके। उद्धव जी भी बेचारे बड़े ज्ञान से आए थे यहां पर गोपियों को समझाने के लिए, थोड़ा सा काउंसलिंग करने के लिए, परामर्श देने के लिए, थोड़ा सा शांत करने के लिए, उनको गोपियां बहुत रो रही हैं भगवान के लिए, मैं जाके थोड़ा सा ज्ञान दूंगा और योग सिखाऊंगा, थोड़ा मन शांति दूंगा उनको, बेचारे बहुत तड़प रही हैं, ऐसा कुछ बड़ा अच्छे विचार लेके आए थे वो। लेकिन सारा उनका जितना भी ज्ञान पूर्ण प्लान था वो सब यहाँ फेल हो गया, और जो बहुत कुछ बोल सकते थे और बोलने वाले थे, वैसी योजना बनाकर बड़े करुणा से आए थे वो, गोपियों का स्थिति देखकर आए, तो बड़ा दुख हो रहा था उनको। कहते 6 महीने उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि सब गोपियां ही बोल रही थी और वो बेचारा सुन रहा था। 6 महीने तक भगवान भी उसकी बात देख रहे हैं, कि 2 दिन में आने वाला था मैसेज देकर, किधर गया? तो 6 महीने के बाद लौटा। तो बोला 6 महीने क्यों लगे? बोले मैंने जो सोच के गया था ना उनको मैं सांत्वना करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, योग सिखाऊंगा, ब्रह्म ज्ञान जो बृहस्पति से प्राप्त किया है वो दूंगा, जो जो मैंने प्लानिंग बना के गया था। हम डॉक्टर कैसे होता है ना, मरीज को देखता है, डायग्नोस करता है, फिर वो प्लान बनाता है कि उसको मैं कौन सी गोली दूंगा, कौन सी परहेज बताऊंगा, कैसे कितने समय के लिए दूंगा, सब योजना बनाता है, उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है। ऐसे प्रिस्क्रिप्शन बना के वो गए थे यहां से, लेकिन सारा प्रिस्क्रिप्शन उधर रह गया, वो उसको अमल ही नहीं कर सके, वो चुपचाप बैठ गए उधर। और गोपियों ने स्वयं अपनी सांत्वना कर लिया, कैसे, भगवान का गुणगान करते रहे, सब जगह जगह उसको लेके गए, जहां जहां भगवान ने उनके साथ लीला किया सब जगह उनको ले गए। और वो देख रहे हैं कि जिस काम के लिए मैं आया हूं वो सांत्वना अपने आप हो रही है, तो मुझे चुप रहना ही अच्छा है। तो एक यात्री है और करोड़ों यात्रा देने वाले हैं, धाम दर्शक, यात्रा ले जाने वाले करोड़ों लोग हैं, तो यात्री एक है और सब कथा कर रहे हैं और एक यात्री सुन रहे हैं, 6 महीने तक सुन रहे हैं। किस तरह से फेल हो गया देखो उनका जो प्लान था। इसलिए भगवान भी बड़े होशियार है, भगवान यहां पर कोई बड़े ज्ञानी भगवान बनकर नहीं आते, बहुत खुद भी एक याचक बनकर आते, प्रेम के याचक बनकर आते हैं, और सबसे अधिक प्रेम की याचना यहां पर करते हूं। बाकी सब जगह ब्रज में राक्षसों को मारते हैं, गोवर्धन को उठाते हैं, लीला करते हैं, क्या क्या अद्भुत बातें करते हैं, लोग दंग रह जाते हैं देख के, लोग चर्चा भी करते हैं, अरे बाप रे कौन है ये, ऋषि है, देवता है, क्यों तपस्वी है, क्या नंद ने पुण्य किए थे कि ऐसा बालक जन्म हुआ, ऐसे ऐसे सोचते रहते हैं। लेकिन वो बालक जो है वो इतने चमत्कार बाहर कर रहे हैं, यहाँ पर सखी बनकर भेष बदल कर कृपा याचना प्राप्त करने के लिए आते हैं, कृपा प्राप्त करने के लिए याचना करते रहते हैं। ऐसी भूमि है ये। ये सभी हमारे जितने भी भौतिक है ना कैलकुलेशन, जो हम गणित करते हैं ना मन में, हमारा कैसा रहता है मन, हमेशा गणित करते रहते हैं क्या मिलेगा, कुछ भी किधर भी आप अगर उधर भी जाएंगे ना तो कौन सी सेवा मिलेगी, अरे वो रोटी मिलने का मुझे नहीं इंटरेस्ट है उसके अंदर, नहीं ओटी में आपको ना डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में रखेंगे, हाँ फिर मुझे आना है। उधर भी हम लोग सोचते रहते कौन सी ऊंची सेवा है, कौन सी कम वाली है, किसमें ज्यादा सम्मान है और ज्यादा रिकग्निशन है, किसमें ज्यादा शाबाशी मिलेगी, किसमें अधिक पुण्य मिलेगा, इसकी गिनती करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है, लाभ क्या मिलेगा ये सोचकर ही सब काम करते हैं हम लोग। अगर इसको सम्मान मिल रहा है वो सेवा करके, अचानक सम्मान मिलना बंद हो गया तो वो सेवा करना भी बंद करेगा, क्योंकि उसका काम दिव्य है, सेवा भी दिव्य है, लेकिन फल उसका भौतिक रूप में देख रहे हो। स्पिरिचुअल चीज को भौतिक रूप में रूपांतर करके उसमें उसकी अटैचमेंट है, उसके अंदर भी अपना पैकेज बना के रखा है उसने। लेकिन आप जिस जगह पर आए हो ना, ध्यान रखना इस बात का, सारे भौतिक जितने भी आपके गणित है ना वो सब छोड़ के आना आप यहां पर। शहर का जो रजोगुण होता है, शहर का जो गिनती करने का स्वभाव होता है ना, हर चीज में गिनती करना, हिसाब करना, हर चीज को नापना तोलना, परख करना उसकी, उसके अनुसार चलना, ये सारा जो गणित है ना वो रजोगुण तमोगुण में आता है, वो सब कुछ छोड़ के यहां पर आना चाहिए। और भी एक मजेदार भाषा में लोग संत बोलते हैं यहां पर कि शहर की जितनी टोपियां है ना वो सब उतार के यहां पर आना चाहिए। एक टोपी एक मैं इंसान हूं, आदमी हूं, एक टोपी है मैं डॉक्टर हूं, एक टोपी है मैं पैसे वाला हूं, एक टोपी है मैं जवान हूं, एक टोपी है मैं पढ़ा लिखा हूं, एक टोपी है कि मैं बड़ा फ्लैट का ओनर हूं, एक टोपी है कि बड़े पद पर मुंबई में काम करता हूं, एक टोपी है कि बहुत सारे लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरे अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं मेरे, मेरा सर्कल बहुत बड़ा है इन्फ्लुएंस वाला। ये जितनी भी टोपियां आप समझते हैं आपके पास है वो सब उतार के यहां पर आना चाहिए। एक ही टोपी पहनना है, ममय वांछो जीवलोक जीवपुत्र सनातन, मैं भगवान का अंश हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं भगवान के सामने, और भगवान की सेवा करने के लिए यहां पर आया हूं और आई हूं। इस भाव से आएंगे ना तो पूरा रेंज मिलेगा आपको यहां पर, जितने टोपियां पहन के आओगे ना उतना आपको नहीं मिलेगा कुछ। बहुत गंभीर वर्षा बाहर हो रही है और आपने रेनकोट भी पहना है और गमबूट भी पहना है, ऊपर से 4 छतरियां भी पकड़ के रखी है, तो एक बूंद भी आपको रेन की स्पर्श नहीं करेगी। हाँ तूफान आएगा तो फिर ऐसा भी आएगा हवा, और ऐसा भी आपको गिला कर देगा, लेकिन तूफान हमेशा नहीं आता है, हमेशा वर्षा ही होती रहती है। बाहर कड़ी कड़क धूप चल रही है, आप अंदर एकदम अंधेरे कमरे में बैठे हो काल कोठरी में तो आपको सूरज की रोशनी लगेगी नहीं ना, विटामिन डी थ्री मिलेगा आपको, है ना। तो हम लोग जिस जगह जा रहे हैं उस जगह के अनुकूल बन के जाना चाहिए। और धाम की पूरी महिमा तब आपको पता चलेगी जब धाम के अनुकूल भाव बनाकर आप धाम में प्रवेश करेंगे। कि धाम में इतनी शक्ति है, जैसे मैंने आपको सुबह मैसेज भेजा, आपने पढ़ा होगा ना, एक आपकी आज की यात्रा जो है ना, एक पहली बार आप कर रहे हो शायद, या इसी बार, बाद में कभी नहीं आ सकते आप समझो, लेकिन सही तरह से यहां पुकारेंगे भगवान को, सही तरह का व्यवहार आप रखोगे शरीर का, मन का, भावना का, और सही प्रकार से सेवा करोगे परफेक्टली, तो इसी एक यात्रा से आप भगवत धाम जाने के योग्य हो जाओगे। बाद में कभी भी नहीं आएंगे आप यहां पर, समझो, आ ही सकते नहीं, कोई कठिनाई आपकी है या किसी प्रकार की परेशानी है, दोबारा आप यहां पहुंच नहीं सकते। लेकिन एक बार जब आप पहुंचे हो, अगर आपका व्यवहार एकदम परफेक्ट वैष्णव जैसा है, शरीर का, मन का, भावना का, आपका सेवा भाव पूर्णता 100% आपने यहां पर जताया है, और भगवान के नाम को आप निरंतर पुकार रहे हो, तो इसी एक ट्रिप में आप जीवन की परिपूर्ति प्राप्त कर सकते हो। इसलिए धाम में आना आसान नहीं है और धाम में रहना भी आसान नहीं है। इसीलिए धाम की तरफ से हमारे लिए सबके लिए बहुत खरी कठिनाई होती है प्रस्तुत। यहां पर किसी जगह पर साफ सफाई है तो कंबल चेंज नहीं करते हैं, किसी जगह पर गर्म पानी बहुत है तो रूम बहुत गंदा है, या किसी जगह पर सब कुछ अच्छा है लेकिन बंदर आके काट लेते हैं, किसी जगह पर सब कुछ अच्छा है लेकिन नीचे उतरते ही पॉकेट कोई मार के ले जाता है, ऐसे कई कठिन कठिन प्रसंगों का आयोजन यहां पर किया जाता है ताकि जो लोग इतने सिंसियर नहीं है वो भाग जाए यहां से। जैसे मेरे भैया एक बार आए थे यहां पर, हमने कहा था उनको कभी भी धाम में जो है आवाज कम करो जरा थोड़ा सा, तो मेरे भैया बड़े आए थे एक बार, हमने कहा था कि कभी भी धाम में जाओगे ना वृंदावन में तो भक्तों के संग में जाना, अकेले मत जाना। फिर भी अकेले आया था फैमिली को लेके, तो उसको एक मंदिर में ऐसे घेर लिया, सारे जिम खाली कर दिया उसका, कोई 11 किलो चावल बोल रहा है, कोई गाय, कोई चावल बोल रहा है, कोई गाय बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई ब्राह्मण बोल रहा है, कोई भोजन बोल रहा है, कोई किसी का क्या बोल रहा है, ऐसे तरह से उसको घेर लिया कि उसका सारा जितना जेब में बचा था वो सब खाली कर दिया। उसके बाद में वो भाई कभी वृंदावन लौट के नहीं आया, इतना बुरी जगह में वापस नहीं जाऊंगा कभी। देखो कैसा है माया का प्रभाव, कैसे देखो। तो इस सारी प्रकार की कठिनाइयां यहां पर माया देवी खड़ी कर देती है ताकि जो वास्तव में प्रामाणिक है, सिंसियर है, वही सब चीज को झेल के भी यहां पर टिकेगा और सब चीज को झेलकर भी थैंक यू बोलेगा भगवान को। जैसे आपको एक तमाचा लगा ले किसने, आप बोले थैंक यू और एक लगा दो, इस तरह का भाव इसका होगा ना, कि माया ने उसको ये परीक्षा लिया, वो परीक्षा लिया, उसका पर्स छीन लिया, उसका चश्मा छीन लिया, उसको जख्म भी कर लिया, उसको इंजुरी भी हो गया, आपके आगे एडमिट हो गया, इधर लूज मोशन हो गए, कुछ भी कर नहीं पाए, कुछ कहीं जा नहीं पाए, कुछ सुन नहीं पाए, लेकिन फिर भी उसका भाव बना रहेगा तो उसको भगवान बड़ी कृपा कर देते हैं। मतलब पर्दा बना के रखे आपके सामने, लेकिन आपके भजन की वजह से वो पर्दा खोल सकते हैं भगवान, भजन करेंगे तो, नहीं तो आपको वहीं से भगा देंगे। कुछ ना कुछ बहाना ऐसे होगा कि आप वापस नहीं आओगे, दूर से दूर भाग जाओगे, क्योंकि यहां पर ऐसी पूंजी रखी है, तो जहां पर बहुत बड़ी पूंजी होती है वहां सिक्योरिटी बड़ी होती है ना, होती कि नहीं होती। जब सबसे अधिक कीमती वस्तु जहां पर रखी गई वहां पर कितनी सिक्योरिटी होती है, बाप रे, आप छेद नहीं सकते उसको, और जाना भी है तो वो उतना क्वालिफाइड व्यक्ति होगा तो उसी को प्रवेश मिलेगा। वैसा ये धाम है, और किसी असीम कृपा से, किसी पुराने पुण्य की वजह से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे पीछे की लाइट लगा दो, सब अंधेरे में सो रहे हैं सब लोग, इतनी लाइट लगा के रखी है, लाइट लगाओ उसको, ऑन करो, सारा सभा मंडप प्रकाश से अच्छी तरह से होना चाहिए प्रकाशित। तो क्या बोल रहा था मैं, तो इस प्रकार से यहां पर वो प्रेम की पूंजी मिल रही है, रखी हुई है, जो जिसके योग्य व्यक्ति है उसी को प्रवेश मिलता है, वो सब चीज को झेलेगा। हाँ, तो मेरा ये कहना था कि धाम में रहना बहुत मुश्किल है। अभी आप लोगों को एकदम बढ़िया से बढ़िया मौसम में आप इतने अच्छे कपड़े पहन के यहाँ पर बैठे हो, और भी दो चार कपड़े पहन सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगी, बेस्ट मौसम में आप आए हो। अब गर्मी में आ जाओ यहाँ पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यहाँ पर, बंदर भी वो गर्मी से बहुत पागल जैसे हो जाते हैं, और जो देखा है उसको काटते रहते हैं, इतना उनका दिमाग जो है ना, राधे श्याम राधे श्याम। तो ऐसे कठिन कठिन परीक्षाएं यहाँ पर होती है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, फिर कुछ फसल नहीं आ रही है, ये गरीबी है, बोलते क्या रखा है इधर, आप लोग क्यों आते हो, हमको बम्बई ले चलो, ऐसे बोलते लोग, इतना कष्ट है यहाँ पर। हाँ, कोई लड़की हमारे जानकारी में वो खीर में गिर गई, बड़े खीर के भगोने में गिर गई, जल गई, किस दिन पे कोमा में थी हॉस्पिटल में। एक पेशेंट ऐसे आई कि वो पंखा है उसके घर में, पंखे के ऊपर कवर नहीं है, तो एक दिन चलते चलते क्या होगा, वो वायर के ऊपर पैर अटका तो पंखा गिर गया, तो पंखे का चलता हुआ पत्ता जो है ना आंख को ऐसे काट के निकल गया। हमारे पास आए थे ऐसे ऐसे कई प्रकार की अद्भुत चीजें हमने यहाँ पर देखी है। इतना कष्ट कभी होता है ना भारत शहर में कभी मैंने देखा नहीं है, जितना धाम में होता है। और मायापुर भी ऐसा ही है, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, बहुत धुंध, बहुत सारी परेशानी, ताकि यहां पर वही लोग रहे जो उस भाव के योग्य है। और आप लोगों को अगर तमन्ना है ना, जो पहली बार आते हैं ना, वो मुझे बहुत बार बताते हैं, प्रभु जी इधर ही रहने का दिल कर रहा है, इधर लगता है इधर ही रह जाए, इतना बढ़िया यहाँ पर कैंप में ऐसा दिव्य अनुभव आया है कि लगता है कि इधर ही रह जाए। मेरे भाई जब सबसे दूसरे भाई मेरे जगन्नाथपुरी में, जब मैं उनको पहली बार ले गया था यात्रा में, हमारे हमारे साथ में आए थे, आपको विश्वास नहीं होगा, उसी समय एक दिन निकाल कर वहां पर उसने फ्लैट का डिस्कशन करके आया कि एक फ्लैट लेना है मुझे यहाँ पर, यहीं पर आके रहना है। सीरियसली जाके कई बिल्डर को मिलके जगह के देख के फ्लैट का नेगोशिएशन करके प्राइस निकाल के फिक्स किया उसने, मुझे आना है वहां पर, बाद में कभी नहीं आया। और एक बार आया था यात्रा में। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब पहली बार हम भक्तों के संग में अच्छे मौसम में अच्छे वातावरण में अच्छे संग में अच्छी सेवा में जुड़ जाते हैं, तो भगवान हमको सैंपल में एक ऐसा बढ़िया अनुभव दे देते हैं, है ना। आपको होटल में खींचने के लिए वो बोलेंगे गुलाब जामुन फ्री, पर अंदर आएंगे तो फिर आपको बहुत बड़ा बिल लगाते हैं, एक थाली का 150 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, लेकिन अंदर आने के लिए गुलाब जामुन फ्री। वैसे भगवान जब हमको पैसे बार बुलाते ना, तो वो ऐसा ही दिव्य आनंद का एक सैंपल दे देते आपको, लो, ताकि हम लोग अंदर आ जाए। लेकिन एक बार अंदर आने के बाद में फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए साधना तपस्या कष्ट जो है भी उसका कीमत चुकानी पड़ती है। सो ज्ञान है वो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहेगा, वो परेशान नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए जितने लोग यात्रा में आते हैं बड़ा आनंद लेकर लौट के आते हैं, लेकिन जो लोग परमानेंट यहां रहने को आते हैं बाहर से, उसको बहुत कष्ट होता है। चार चार बार टाइफाइड हो जाता है, पांच पांच बार पैर उनका मोच आ जाती है, तीन तीन बार जॉन्डिस हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है। लेकिन जब एक बार यहां का आनंद का चस्का किसी को लग गया ना, वो कितनी भी कठिनाई झेल सकता है, क्योंकि उन कठिनाइयों के सामने वो आनंद बहुत गुना ज्यादा है, और वो अंदर का आनंद है। बाहर से आपको लोगों लगेगा कि कितना कष्ट झेल रहे हैं लोग, ये कैसे रह रहे यहाँ पर, जाना चाहिए वापस उनको, बहुत हो गया अभी यहाँ पर। लेकिन वो जो आनंद का आत्मा को अनुभव लगा हुआ है ना, इसका जो स्वाद आत्मा को आ रही है यहाँ के धाम के हवा से, भोजन से, दर्शन से, हाँ, भगवान की सेवा से, भगवान के धाम का दिव्यता से जो उनको अनुभव आते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते फिर, वो बोले चलेगा। बाद में बोलते हैं कि और कष्ट आने दो, एक ही बार दे दो जितने कष्ट देने हैं, दोबारा यहां पर आना ही नहीं है हमको, सब हिसाब किताब खत्म कर दो, जो दोबारा खींच के लेके आएगा ऐसा हिसाब रखो ही नहीं, सब दे दो एक ही बार, होल सेल में दे दो, ऐसी मनोवृत्ति निर्माण होती है। तो ये सारी मनोवृत्ति निर्माण होने का श्रेय किसको है? धाम को है, जो भगवान ने बनाया है, जिसमें आपको एंट्री दिया है। तो भगवान को प्रार्थना करना कि आप चाहे जितने कष्ट दो, लेकिन अपने चरणों में रखो, क्योंकि कष्ट तो हम आपकी वजह से नहीं भोग रहे, कष्ट भोग रहे हैं हमारे कर्मों की वजह से भोग रहे हैं। दोष तो सबको देते हैं हम लोग, जरा कुछ कष्ट होगा तो इसकी वजह से, जरा कुछ कष्ट इसकी वजह से। ऐसे हमारा स्वभाव है, हमको तुरंत किसी को उंगली दिखाने को अच्छी लगती है, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बदले में किसी को दोष दिया जाए तो अच्छा लगता है बहुत, थोड़ा सांत्वना अपने आप हो जाती है कि भाई तुम दोषी हो मेरे वजह से। अगर हम दोष भी कष्ट भी हो रहा है और मुझे बता भी जा रहा है कि मैं ही कारण हूं उसका, तो और कष्ट होगा ना मुझे उस सोच के कि इसका कारण मैं ही हूं, कितना डिप्रेशन आ जाएगा। लेकिन दुख हो रहा है और उसको ब्लेम किसी को देंगे तो थोड़ा अपने आप सांत्वना हो जाती है। लेकिन भक्त लोग जो होते हैं वो सब जानते हैं कि ये सब जो हो रहा है ये मेरे ही वजह से है, सब कुछ हो रहा है, किसी को दोष देने से लाभ क्या है? बच्चे ऐसे हैं, पति ऐसा है, भाई ऐसा है, माँ ऐसी है, पिताजी ऐसे हैं, कुछ फायदा नहीं, बोल के कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैसे रहना सब कुछ। तो ये सब जो है ना, ये भावना की यात्रा है, ये मन के विचारों की यात्रा है, कहां ले जा रहे हैं आपके विचार आपको? आखिर में ऐसा विचार होना चाहिए कि जो भी है अच्छा है, कम से कम भजन तो चल रहा है, नाम तो नहीं छूट रहा है भगवान का, भगवान ने ठुकरा तो नहीं दिया है, पीट रहे हैं बहुत लेकिन अपने गोद में रख के पीट रहे हैं, है ना, जैसे माँ अपने एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से पीट रही है, तो एक हाथ से पकड़ा तो है ना कम से कम, या लात मार के दूर दूर फेंक रही है दूसरी बात है। तो ये देखना चाहिए कि भगवान ने अपना नाम तो आपसे छीन नहीं लिया ना, सब कुछ कष्ट दे रहे हैं, सबसे बड़ी प्राप्ति जो है वो दे दी है आपको, सर्वोच्च प्राप्ति जीवन की जो है, सर्वोच्च धन, अमूल्य धन जो है वो सब आपको दे दिया है, उसकी कीमत के रूप में थोड़ा थोड़ा कष्ट दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा लग रहे हैं हमको। और आज जो कष्ट आपको मिल रहा है वो आपको सबसे ज्यादा कष्टमय दुखदायी लगेगा, कल उसे 10 गुना दुख आएगा तो वो दुख सबसे ज्यादा लगेगा, जिस समय जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा लगेगा कि इतना दुख है ना क्या बताएं आपको। उसके सामने 10 गुना भोगने वाला आदमी भी आएगा तो आपको लगेगा आपका इतना कुछ नहीं, मेरा बहुत ज्यादा दुख है लगेगा आपको, आपको पता नहीं कितना कष्ट भोग रहा हूं मैं, एवरीबडी फील्स लाइक दैट। लेकिन धाम में आकर हमको वो शक्ति प्राप्त होती है सहन करने की, थैंक यू बोलने की, उतना कष्ट आने पर भी थैंक यू बोलने की शक्ति यहां मिलती है, और यहां वो शक्ति की याचना करनी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, यहां मिल सकती है आपको, ऐसी कृपा है यहां पर। तो आप लोगों का भाग्य है सब लोगों का कि आप ऐसे जगह पर आए हो। एक बार यहां के संत आए थे, यहां पर बोले थे, बड़े गृहस्थ आश्रम का बहुत निंदा किया उन्होंने कि गृहस्थ आश्रम में देखो कितने भोग होते हैं, कितना ये होता है, कितना लोग पाप करते हैं, धन के पीछे क्या नहीं करते हैं, ऐसा बहुत सारा, नहीं नहीं शादी हो गए तो क्या करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, ऐसा बहुत सारा वर्णन किया उन्होंने। मैं सोच रहा हूँ बाप रे, 300 लोग मुंबई से आए सब कैंप में आए सेवा करने के लिए, इतने डिस्करेज हो जाएंगे, क्या सोचेंगे, जो नए नए शादी के लोग भी थे उसके अंदर, बड़े बूढ़े भी थे और कई साल की शादी होने के बाद वाले लोग भी थे, हर प्रकार के लोग थे, 400 लोग बैठे थे इसी प्रांगण में यहाँ पर। इन सारा गृहस्थ आश्रम का ऐसा वर्णन करने के बाद में, जो भागवत में दिया है वो अपने मन से नहीं कर रहे थे, वो तो सन्यासी है, उनको क्या मालूम गृहस्थ आश्रम में क्या गुल खिलाए जाते हैं लेकिन एम ने बोला कि ये सब गृहस्थ आश्रम छोड़कर आप पर कुछ दिनों के लिए यहां पर ब्रजवासियों की राधा रानी के चरणों में सेवा करने को आए हैं, आप धन्य हो सब लोग। तब मुझे समझा कि ये सब वर्णन क्यों कर रहे हैं, भगवान भी ऐसे ही हैं, बहुत सारा कष्ट 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 आपको देंगे, आखिर में ऐसा आपको वरदान देंगे क्या बोलेंगे, इतना सारा कष्ट जो है ना ओके था एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्थ इट, ऐसा बोलेंगे आप। कितना संत का मनोवृत्ति जो है ना वो समझना बहुत मुश्किल है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजाए, वैष्णव के मन में क्या चल रहा है कोई समझ नहीं सकता है, दिव्य स्तर पर चलता है वो। आप बोल रहे कैसे महात्मा ये सब सब ग्रस्तों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि ऐसा बंबई, एक बंबई का गृहस्थी जीवन की माया को छोड़कर कुछ दिनों के लिए आप राधा रानी के चरणों में दिव्य सेवा करने को आए हो, इसलिए आप धन्य हो, कंक्लूजन उसका वो है। तो इसीलिए आप टेंशन मत लेना, जो भी कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से सही हो रहा है, आपके हित में हो रहा है। जब बच्चे को इंजेक्शन दिया जा रहा है तो चिल्ला रहा है, लात मार रहा है, बोल रहा है माँ दुष्ट है, राक्षसी माँ है मेरी, ये देखो चार लोगों को पकड़वा के मुझे इतना बड़ा सुई चुबा रही है, कैसी दुष्ट माँ है, ऐसी कोई माँ होती है? ऐसा आपको लगेगा जब बालक के रूप में होंगे, लेकिन वो आपका रोग दूर करने के लिए आपका कल्याण का ही कार्य किया जा रहा है, जो आपके अज्ञान की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हो रहा है आपके कल्याण का कार्य। इसी प्रकार से राधा रानी और कृष्ण की भगवान की ओर से जब आप एक बार दिखा देते हो कि मैं आपका बनना चाहता हूं, अपना रब बोली मुझे अपना बना लो, जब ऐसा एक बार आप बोल लेते हो आप शायद उसको भूल जाओगे कि कभी आपने ऐसा बोला था, और आपको लगेगा मैंने ऐसा क्यों बोला था, मैंने गलती किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा भी आप बोलेंगे। लेकिन अगर उस बार आपने दिल से ये बात बोले होगी तो भगवान उसको नहीं भूलेंगे कभी, आप शायद भूल जाएंगे उसको। हरे कृष्णा। तो इसलिए यहां पर जो भी पुकार रहे हो सावधानी से पुकारो, बड़ी सोच समझ के पुकारो, क्योंकि वो सब यहां पर सुन रहे हैं, राधा रानी सुन रही है, कृष्ण भगवान सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और उसका आपको फल भी देंगे। वो बहुत इंटेंस जगह है, बहुत तीव्र जगह है, यहां पर जो जो आप पुकारते हैं ना वो उसको लाखों गुना ज्यादा प्रभाव से सुना जाता है, क्योंकि यहां लोकल लाइन है, एसटीडी नहीं है। पता है आपको कहानी क्या है, थोड़ा कम करूं ना आवाज। एक मिशनरी कोई बिशप थे, उनके पास भी कोई इंडियन आदमी गया वैटिकन में, वैटिकन मालूम है आपका, वैटिकन क्या कर रहे हो आप, जस्ट मैनेज दिस साउंड। सो तो भारतीय आदमी वो वैटिकन में गया, और वो वैटिकन के फादर ने फोन लगाया, रेड फोन हॉटलाइन, हॉटलाइन से भगवान से बात करते सर। तो उन्होंने हॉटलाइन लगाया और भगवान से कनेक्शन दे दिया। एक ऐसे एक एलेगोरिक कहानी है, मतलब सच कहानी नहीं है, लेकिन ये बहुत अर्थ वाली कहानी है। तो वो भारतीय व्यक्ति ने गॉड से बहुत देर बात की और फिर फोन बंद किया, तो बहुत लंबा थोड़ा बिल आया, कई हजार डॉलर का बिल आया, बड़ा दुखी हो गया, लेकिन दे दिया, भगवान से बात कर दिया। बोला कि महाराज जी आप भी हमारे इंडिया में आइए। तो वो आदमी वृंदावन में लेके आया, तो उसके भी घर पे लाल रंग का हॉटलाइन फोन था। उसने कहा आपने आपके देश में मुझे भगवान से बात कराया, तो अब मैं मेरे भगवान से मेरे देश से आपको बात करा दूं। तो हॉटलाइन से कनेक्शन किया और उनको भगवान से बात करने को दिया। उन्होंने भी बहुत देर तक बात किया भगवान से, फिर फोन जब बंद हुआ तो बिल दिया उनको एक रुपए का। बोले अरे इतना समय बात किया और एक ही रुपया? तो बोले यहां पर लोकल कॉल है ना, बस यही लाइन सही है, बाकी सब कुछ बनी बनाई कहानी है, बता देता हूं। क्योंकि यहां पर भगवान कदम कदम पर उपलब्ध हैं, कोई एसटीडी इंटरनेशनल आईएसडी करने की जरूरत नहीं है, यहां पर भगवान लोकल है। विदेश के लिए वो इंटरनेशनल कॉल करना पड़ेगा, उनको दूर है बहुत भगवान। पर यहां भगवान जो है ना, वो आपका अगर भाव सही रहेगा ना, मैं बता देता हूं आपको, अगर आपका भाव सही रहेगा कहीं मिल जाएंगे आपको ऐसे ही इधर उधर देखते देखते। कमी केवल भाव की है, हमारा भाव सही नहीं है, अभी तक तैयार नहीं है, रेडी नहीं है उसके लिए, इसलिए कई बार आने के बाद भी मिलते नहीं है। लेकिन संतों की कितनी कहानियां हैं कि उनसे वो बात करते हैं, रूप सनातन गोस्वामी, कितने संतों से उनकी रोज मुलाकात होती थी। जीव गोस्वामी के लिए एक बार राधा दामोदर जी ने बुलाया, जीव आ जाओ मुझे भूख लग रही है, जल्दी भोजन बनाओ। भगवान बता देते ये बनाओ वो बनाओ, और जीव गोस्वामी जी बना देते। एक बार उनको पुकारा, जीव कहां पर हो, मुझे बंसी बजानी है, आपको सुनानी है, आ जाओ। तो उनके कृष्ण बलराम दोनों बंसी बजाने लगे, दामोदर जी बंसी बजाने लगे और जीव गोस्वामी बेहोश हो गए। बोलते जीव आ जाओ, मैं भी नृत्य करने जा रहा हूं, देखने को आ जाओ। सनातन जी को बोल रहे हैं अरे थोड़ा सा नमक तो दे दो। ऐसा सब वार्तालाप जिस जगह होता है वो भूमि है ये जहां पर हम बैठे हैं। वो किधर विदेश में कोई ऐसी बात है क्या? अल्लाह ने भी दर्शन दिया तो कैसे दर्शन दिया? आवाज के रूप में दिया और फिर पहाड़ पर कुछ लकीरें निकली जिसको फिर वो शास्त्र के रूप में प्रकट किया गया। हमारे भगवान तो सामने सामने खड़े होकर गीता सुनाते हैं, 1-to-1। आप प्रश्न पूछ सकते हो बीच में, वो पूछ देना कि कौन है वो साधु, कैसे पहचाने उसको, हाँ सत प्रज्ञा का भाषा कैसे बोलता है वो, कैसे चलता है, प्रश्न भी कर रहे बीच में, उसका उत्तर भी दे रहे। 1-to-1 कॉन्टैक्ट, ऐसी भूमि है ये। सब परफेक्ट है यहां पर, कमी केवल हमारी है, हमारे तरफ से कमी है, इसलिए उतना रिस्पांस का अनुभव नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। लेकिन जगह सही है इतना याद रखना, इतना ज्ञान तो रखना बिल्कुल। और यहां पर भगवान से कुछ नहीं मांगना, पैसे दो, नौकरी दो, परिवार का सुख दो, अच्छी पत्नी दो, अच्छा पति दो, अच्छे बच्चे दो, कई महीने से बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये सब बेफिजूल की मांग यहां पर मत करना। यहां पर केवल चरणों की भक्ति मांगना बस, बाकी सब तो पता है ना पहले वो कर्मों के हिसाब से आ रहा है आपको, जो नहीं आ रहा है वो जो आ रहा है दोनों कर्मों के हिसाब से आ रहा है, उसमें कोई चिंता और दुख करने की बात नहीं है, हम ही कारण है उसके और वो आ रहे हैं। यहां पर ऋणी हो गया हो, कृतज्ञ हो गया हो, धन्यवाद के भाव में आओ, फिर भगवान आपका धन जो है उनका भक्ति का लुटा देंगे आपके ऊपर। और क्या लुटाने का मतलब है, आपके ऊपर धन लुटा गया मतलब क्या है, आपको अपनी सेवा देंगे, वो अपना बनाकर अपनी सेवा में रखेंगे। सबसे बड़ी देन जो है ना वो सेवा है। सेवा ऐसा माध्यम है जो भगवान से हमें हमेशा के लिए जोड़ के रखता है, फिर चाहे दुख हो, दर्द हो, कष्ट हो, कोई लुट जाए तो भी ये धन ऐसा है कि उससे आपको कभी कमी नहीं महसूस होगी जीवन में। और बाकी हमारे में से ऐसा तो कोई नहीं है जो दो वक्त रोटी के लिए भूखा है, दो इंच कपड़ा शरीर पे नहीं है, ऐसा तो इतना कोई गरीब तो है नहीं। गरीबी है, कष्ट है, सब कुछ है, लेकिन उतना तो डेस्परेट कोई नहीं है। नबड़ी सो डेस्परेट एक्चुअली। तो थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को, जो ऐसे कठिन परिस्थिति में भी जो कष्ट हो रहा है उसमें भी धन्यवाद देता है ना, उसको भगवान सबसे अधिक कृपा करते हैं। इसलिए अपने बरसाना के वास को आप बड़ी गंभीरता से लेना, पूरा चार्ज हो जाना, क्योंकि पूर्णता सच्चिदानंद भूमि है ये। भक्तों के संग में रहना, इधर उधर मत भटकना, नजारा देखने को मत जाना, केवल भक्तों के संग में कौन से भक्तों की सेवा कर सकते हैं उसके पीछे रहना। यहां पर होलसेल में भक्तों की सेवा है, सब लोग ब्रजवासी हैं और उनकी सेवा में आप लगे हो, तो इनकी सेवा में लगने से भगवान भी हमारे वश हो जाते हैं, इतने ये लोग भगवान को प्रिय हैं, यहां पर जन्म लिए। एक आखिरी में कहानी बताऊंगा आपको कि यहाँ के लोग कितने जैसे दिखते वैसे नहीं होते हैं, केस कितने ऐसे हैं लोग। यहां पर एक भयंकर डाकू था ब्रज में, यहां जन्म हुआ था उसका, ब्रजवासी था वो, इतना खूंखार डाकू था कि ऐसे आए चलते फिरते लोगों को मार देता था, इतना क्रूर था वो। पुलिस ने उस पर ना शूट एट साइट का वारंट, मतलब वो दिया था, क्या बोलते उसको, ऑर्डर दिया था, कहीं भी दिखेगा ना तो कोई भी एकदम सादा सा सिपाही भी उसको गोली से मार सकता है या सिपाही अधिकारी मार सकता है, जिसको दिखेगा उसको उड़ा दो, ऐसे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था, इतना वो वांटेड था, बहुत बड़ा इनाम लगाया था इसके ऊपर वगैरह वगैरह। तो कभी वो पुलिस को मिला नहीं, ब्रज के पुलिस को। तो कई महीने साल तक चलता रहा उसका खेल। एक दिन पुलिस के मुठभेड़ में आ गया वो, कि पुलिस को ऑर्डर था ही, उसने धनाधन गोलीबार किया उसके ऊपर और वो जख्मी हो गया और मरणासन्न जैसे हो गया, उसको छाती में भी गोली लग गई, तो वो ना ऐसे छाती को ऐसे पकड़ के बांके बिहारी के मंदिर में गया और हे बांके बिहारी बोलकर वहां मर गया आपके सामने। देखो क्या बोलोगे आप उसको, लेकिन इतना पापी था, डाकू था, और लेकिन आया किधर एंड में हो, है ना। तो ये कहानी हमने हमारे गुरुदेव के मुख से सुनी है कि इस स्थिति को जज करने के योग्य हम नहीं है। इसका कर्मों का हिसाब क्या था, उसका स्पिरिचुअलिटी क्या था, हम लोग तो समझ सकते नहीं। इसका तो यह हिसाब ही पूरा अलग है। और हम लोग ने गीता में भगवान के मुख से भी सुना है, अंत काले च मामे वो स्वरण मुक्त्वा कलेवरम, ये भी हमने सुना है। और ये भी देख रहे हैं इतना खून खराबा किया है, इतना डाकू है, इतना शूटेड साइट का ऑर्डर है, एक समझे कैसे इसको। तो उत्तर उसका ये है कि समझने का प्रयास ही मत करो, क्योंकि ये गणित ही अलग है पूरा कुछ। ये कितना भी बाहर से कैसे भी दिखेंगे आपको, लेकिन इनके हृदय में जो भगवान का प्रेम का जो गहराई में जो वृक्ष है भगवान का प्रेम का, वो अद्भुत है बहुत। नहीं तो वो इतनी गोलियां खाकर इतना पाप करके बांके बिहार के मंदिर में क्यों आता, क्यों याद करता उनको। ऐसा है सभी, मुझे बिल्कुल तर्क दृष्टि से इसका अर्थ मत पूछना, नहीं पता है मुझे इसके बारे में। इतना ही पता है कि ब्रजवासी बहुत दिव्य होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। इसलिए उनकी सेवा करने का मौका मिला तो कहते हैं कि उनके रूप में राधा कृष्ण स्वयं आपके हाथों से सेवा लेने के लिए आते हैं और सेवा लेते हैं। तो कीजिए आप सेवा, उसमें काम चोरी मत कीजिए, उसमें अहम भाव मत लाइए कि तुम ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला, तुम क्या समझते हो अपने आप को, वैसे वैसे मैं 10 साल से आ रहा हूं यहां पर, तुम अभी आए हो, ये सारा जो आप पर भाव है ना वो सब मत लाना इसके अंदर, वो आपको दूर करेगा भगवान से। सारे किंतु परंतु अहम जो है ना उसको छोड़कर निरपेक्ष बनकर आप सेवा करना, तो भगवान आपसे दूर नहीं है। भगवान दूर है केवल हमारे गलत भावनाओं की वजह से, वो दूर है। हमारे मन में जो विकल्प होते हैं ना, विकार होते हैं, दोष होते हैं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे का भाव होता है, इसके वजह से वो दूर है। तो यही है, वो कहीं दूर नहीं है। हमने अपने भावनाओं के जाली से उसको दूर करके रखा है, अपने ही ऐसा एक फेंस बना के रखा है, उनको उससे बाहर रखा है। जैसे ये भावनाओं की जालियां सब तोड़ देंगे हम लोग और एक सामान्य सादा सिंपल जीव बनेंगे ना, जैसे हम लोग हैं भगवान के अंश के रूप में, वैसे स्वाभाविक रूप में आएंगे, उस भाव में आएंगे, तो भगवान आपसे दूर नहीं है। आपको साक्षात्कार तथास्तु के रूप में आने की भी जरूरत नहीं, आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, गले लगाएंगे, आपको प्रेम से अपना बनाएंगे, क्योंकि वो प्रेम लुटाने के लिए यहां पर आते हैं। सब कुछ छोड़कर, खुद भी भगवत्ता धन दौलत सब छोड़कर चिकचोर बनकर आते हैं यहां पर, है ना, एक यकश्चित बनकर आते हैं, याचक बनकर। तो हम लोग, हमको तो आना ही चाहिए, अपने भगवान जिसके मालिक, जिसके जो इस धाम के मालिक है, वही यहां पर एक सामान्य व्यक्ति बनकर, एक चोर बनकर, एक सामान्य बालक बनकर आते हैं। तो हमको सामान्य बनकर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि वही धन की टोपी और पद की टोपी और विद्या की टोपी पहन कर आओगे तो कैसे। वो भगवान जो खुद सब कुछ वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर आए हैं गोपियों का छाछ चोरी करके पीने के लिए, वो इतने खुद ही भाव में आ रहे हैं, तो हमको तो आना ही चाहिए। तो उनके भाव से मैच करेंगे तो हमको वो अपना लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।